बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तहज़न, दर्स नंबर 10। कल मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी कि अपनी आंखें बंद करके सोचें और फिर अपने पास लिख के रखें कि आपको आंखें बंद करके कितने रंग नज़र आए, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो लोगों को कराई जाती है उनके तखय्युल की और उनकी इमेजिनेशन की डेप्थ देखने के लिए, कि वो जब अपने कॉन्शियस रियलिटी से डिसंगेज होते हैं, मसलन जैसे वो अपनी आँखों की इनपुट जब बंद कर देते हैं तो उनको अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल में से जो कम्युनिकेशन होती है उसमें उन्हें क्या नज़र आता है। तो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने आंखें बंद की और आपको सिर्फ अंधेरा नज़र आया तो ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई सबकॉन्शियस लेवल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि आप अपने सबकॉन्शियस से काफ़ी डिटैच्ड हैं और काफ़ी डिसंगेज्ड हैं। जो कभी कभी मसला उसमें ये होता है कि जितनी हम अपनी कॉन्शियस रियलिटी में इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हम अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस से दूर होते चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे ऐसी अवामिल और ऐसी बातें पाई जाती हैं जो हमें कॉन्शियस रियलिटी में तंग करती हैं। कभी ना तमाम ख्वाहिशात होती हैं, कभी अधूरे काम होते हैं, जैसे हमें बाज़ औक़ात याद नहीं आता कि यार मैंने क्या काम करना था, ऐसे लगता है जैसे मुझे कुछ काम भूल गया है, और वो चीज़ें फिर हमें तंग करती हैं और हमारी कॉन्शियस रियलिटी को वो डिस्टॉर्ट करती हैं। कभी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं लोगों को, जो सारी चीज़ें बेसिकली हमारी ज़ात को और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को और हमारी रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी और ये आप बार बार करें, जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे और जितना आप कॉन्शियसली ये सोचेंगे कि जब मैं आंखें बंद करूँगी तो मुझे रंग नज़र आएंगे, उतना ही आप देखेंगी कि आप कि वो नंबर ऑफ़ कलर्स या एंगल्स ऑफ कलर्स या शेड्स ऑफ कलर्स जो हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। और आप ये एक्सरसाइज प्रोग्रेसिवली ज़्यादा ज़्यादा वक्त के लिए करें, और गहरी सांसें लेने का मैंने आपको ख़ास तौर पे कहा था, पहली दफ़ा आपने 5 गहरी सांसें लेनी हैं और आपने इन रंगों को इमेजिन करना है। बाद में आप जितनी देर तक ये कर सकती हैं बग़ैर किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के या बग़ैर किसी कॉन्शियस थॉट के, क्योंकि आप ये नोट करेंगी कि इवन 1 मिनट भी बहुत लंबा टाइम है और आपका दिमाग जो है वो एकदम से आपको कोई थॉट दे देता है, जैसे ओहो आज क्या पकाना है या ओहो आज क्या पहनना है। तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कॉन्शियस रियलिटी जो है उसने कितना ज़्यादा आपको अपनी कंट्रोल में लिया हुआ है, आपको अपनी कैद में लिया हुआ है, और वो आपको और कुछ भी नहीं सोचने देती और कुछ नहीं करने देती, और इस वजह से हम लोगों की क्रिएटिविटी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। तो जब क्रिएटिविटी सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारा एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है और हम बड़े क्रिएटिव हैं और हम बड़ी पेंटिंग्स कर रहे हैं और हम बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं और हम बड़े खूबसूरत फ्लावर अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें क्रिएटिविटी हैं, लेकिन क्रिएटिविटी दिमाग की एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल से बचाती है। क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो बहुत कम परेशान होते हैं, बहुत कम वो गमगीन होते हैं। रियली क्रिएटिव लोग जो होते हैं, जिन लोगों के माइंड के कनेक्शंस डेवलप्ड होते हैं, और क्रिएटिव लोग वो होते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जितना हम अपने कॉन्शियस रियलिटी को कंट्रोल करेंगे और हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को देखेंगे और अपनी मर्ज़ी के काम करेंगे और हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही हम अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होंगे और हमें चीज़ों के ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस नज़र आएंगे और ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे कनेक्शंस हमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। जो ला तहज़न हमारा मकसद भी है कि हमने परेशान नहीं होना, हमने गमगीन नहीं होना, हमने एक खुशबाश हशाश बशाश ज़िंदगी गुजारनी है, और हम ऑलरेडी आराम और सुकून का फ़र्क भी पड़ चुके हैं। चाहे हम फिज़िकली आराम से ना हों, چاہے خدا نخواستہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو یا ہمارے پاس مٹیریل کمفرٹ نہ ہو یا جیسے آج کل ہے ہم بہت گرمی میں بیٹھے ہوں ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہوں لیکن ہم آرام کی کمی کی وجہ سے بے سکون نہیں ہوں گے. یاد رکھیں سکون آپ کے اندر ہے. سکون موسم میں نہیں ہے, سکون لباس میں نہیں ہے, سکون کھانے پینے میں نہیں ہے, سکون شاپنگ میں نہیں ہے. ہاں آرام ان چیزوں میں ہو سکتا ہے لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں پایا جاتا. تو آج کا درس جو ہے, اور اس پیج کی میں آپ کو فوٹوگراف بھی بھیجوں گی, میں نے اپنے جب مجھے لوگ کوئی ایسی بات کہتے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں تقریباً سن 2000 سے میری یہ عادت ہے. 2000 میں میں نے فیلوشپ شروع کی تھی اپنی, اور وہاں پہ میری ایک پروفیسر تھیں جن کو کوئی جینیٹک بیماری تھی. مطلب وہ خاتون تھیں, ان کا نام تو میں یہاں نہیں لیتی کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کانفیڈینشیلٹی والی بات ہے, لیکن میری یونیورسٹی میں ایک خاتون تھیں جن کو کوئی جینیٹک بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح بول نہیں سکتی تھیں, صحیح طرح چل نہیں سکتی تھیں, ان کی انگلیاں خاصی ٹیڑھی میڑھی تھیں, وہ صحیح طرح خوراک نگل بھی نہیں سکتی تھیں, وہ کافی نرم خوراک کرتی تھیں, چلتی پھرتی تھیں لیکن وہ بھی خاصی مشکل سے تکلیف سے, اور ایسے لگتا تھا جیسے چلتے ہوئے ان کے ہپس میں اور ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے. کچھ ہڈیاں بھی ان کی, یعنی جو کمر کی ہڈی ہے یا جو شولڈر کی ہڈیاں ہیں, وہ کچھ ٹیڑھی مٹیڑھی سی تھیں, خاصی بیچاری وہ ڈسیبلڈ سی لگتی تھی. لیکن وہ بہت ہی ایک بریلینٹ خاتون تھیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ جینیٹکس کی اسپیشلسٹ تھیں. اگر میں آپ کو ان کا نام بتا دوں, شاید آپ گوگل کر کے انہیں ڈھونڈ بھی لیں کیونکہ وہ بہت مشہور ہیں, بہت مشہور جینیٹسسٹ ہیں. اور ان کے ساتھ, یعنی ایک تو میں آپ کو, اکثر لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ مجھے زندگی میں جو سب سے بڑا ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا وہ یہ تھا کہ ایک اردو سپیکنگ خاتون جو ہیں تو عربی قرآن سکرین پہ دیکھ رہی تھیں اور اس کے وہ اردو میں بول رہی تھیں. تو مجھے ایک کانشیس جھٹکا لگا کہ یہ تو اردو بولتی ہیں اور عربی کو دیکھ رہی ہیں اور بول یہ اردو میں رہی ہیں, ان کو سارا ترجمہ آتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس چیز نے مجھے قرآن سیکھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کی ایک موٹیویشن دی کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان خاتون نے سیکھ لیا ہے, اور اگر انہوں نے سیکھا ہے تو میں تو ہزاروں پیجز ایم بی بی ایس کے پڑھ چکی ہوں, میں تو ضرور ہی سیکھوں گی اس کو. اور الحمدللہ گو کہ مجھے اسپوکن عربی نہیں آتی ہے اور میں عربی گرامر کی بھی ایک خاصی نالائق اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن قرآن پڑھتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ اس کی آتی ہے. تو دوسرا جو حیرت کا جھٹکا تھا وہ ان خاتون نے مجھے لگایا ہے جب میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں, جب میری ان سے اچھی دوستی ہو گئی تو میں نے کہا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ اتنی بڑی جینیٹک کی اسپیشلسٹ ہیں لیکن آپ کو خود کوئی جینیٹک مسئلہ ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تو آپ کو کیا کبھی کوئی مایوسی نہیں ہوتی ہے؟ آپ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ میں اتنے زیادہ جینیٹک مسئلوں والے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں اور میں ان کی ڈائگنوسس کر رہی ہوں؟ اور وہ اتنی قابل تھیں ماشاء اللہ کہ جب وہ بچے کو دیکھتی تھیں اور اس کی آنکھوں کی شیپ اور ناک اور منہ کو دیکھ کے وہ بتا دیتی تھیں کہ اس کے فلاں کروموزوم میں کوئی مسئلہ ہے. اتنی بریلینٹ وہ خاتون تھیں. تو ان سے پھر میں نے یہی پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ گاڈ ہیز بین انفیئر ٹو یو, آپ اتنی بڑی جینیٹسسٹ ہیں اور آپ کو خود ہی جینیٹک مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے پھر ایک بات کہی جو بہت ہی ایک حیرت کا جھٹکا تھی میرے لیے اور ساری زندگی کا سبق تھی, اور اس کی میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاتی ہوں کیونکہ وہ بات میں نے انگلش میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں میں لکھ کے رکھتی تھی جو باتیں مجھے ہلا دیتی تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ افشاں, اگر مجھ میں یہ جینیٹک بیماری نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی اتنی اچھی جینیٹسسٹ نہ ہوتی, کیونکہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جو ہمیں جو چیز سکھانا چاہتا ہے اور ہمیں جس چیز کی قدر بتانا چاہتا ہے وہ ہم سے لے لیتا ہے. آپ یقین کریں ان کی یہ بات آج بھی مجھے یاد ہے. وہ انگلش میں جو انہوں نے کہا تھا وہ بھی میں آپ کو تصویر بھیج دوں گی, میرے پاس لکھا ہوا ہے, لیکن آئی واز جسٹ امیزڈ اس کی پازیٹیوٹی پہ کہ یہ ایک قدم بھی رکھتے ہوئے اس عورت کو اتنا درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, مشکل سے یہ بولتی ہے, ہم لوگ ان کے قریب کان کر کے سنتے ہیں کہ ہم سے کوئی لفظ نہ مس ہو جائے, وہ اتنی قابل ہیں تو جو وہ ہمیں ٹائم دے رہی ہیں وہ ٹائم ضائع نہ ہو جائے. और ये इनकी सोच है, यानी इस तरह की सोच है इनकी। और फिर वो ज़ाहिर है जेनेटिक्स की दुनिया की एक शहज़ादी थी, वो एक मलका थी। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, सऊदी अरब से और जापान से और ऑस्ट्रेलिया से बच्चों का खून उनके पास भेजा जाता था और बच्चों के बायोप्सी सैम्पल्स भेजे जाते थे कि प्लीज़ मैडम आप हमें डायग्नोस करके बताएं क्योंकि हमें इस बीमारी की नहीं समझ आ रही है। तो अल्लाह ने उनसे जो चीज़ ली थी उन्होंने उसी चीज़ में कमाल हासिल किया और एक लिहाज से वो पूरी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रही थी। दूसरी मिसाल जो मैंने आपको देनी है वो तो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट की है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। उन्होंने उनके पास लैब में वो जरासीम उगाते थे और उनके पास पीट्री डिशेस होती थी, जो हम में से जो लोग जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो पीट्री डिश में हम आगर डालते हैं, एक जेली होती है और उस पर हम मुख्तलिफ जरासीम उगाते हैं और फिर उन्हें स्टडी करते हैं। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, जो ख़ुद भी एक नॉन मुस्लिम थे, उनकी लैब में एक दफ़ा फफूंदी का कोई जैसे पीस था या फफूंदी कहीं पर पड़ी हुई थी और वो उड़ के उनकी कल्चर डिश में गिर गई, एक ऐसी कल्चर डिश में जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया उगे हुए थे, काफ़ी सारे बैक्टीरिया थे उसमें। तो उन्होंने जब वो पीट्री डिश उठाई और देखा तो जहाँ पे फफूंदी गिरी थी वहाँ पे बैक्टीरिया मर गए थे, ख़त्म हो गए थे। और इस तरह उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की, जो कि अगर अरबों नहीं तो अरबों ही कहना चाहिए, मतलब अरबों जिंदगियाँ बचाने का वो वसीला बना है वो पेनिसिलिन, जो उन्होंने फफूंदी उस डिश में गिरने से। और फिर वो खासे अपसेट हुए थे, खासे चीखे थे अपने लैब असिस्टेंट्स पे कि आप लोगों की वजह से मेरा पूरा कल्चर ख़राब हो गया, गंद गिर गया उसमें, ये वो। यहाँ तक कि उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया जो थे वो फफूंदी की वजह से मरने शुरू हो गए थे। तो उस फफूंदी का नाम पेनिसिलियम था, वो फंगस जो था, और वो उससे उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की, जो सब एंटीबायोटिक्स की माँ है। उन्होंने ये कहा था कि ये गॉड ही का हाथ हो सकता है जिसकी वजह से ये फंगस मेरी कल्चर डिश में गिरा है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आज दुनिया ने मुझे इतना बड़ा जो बादशाह बनाया हुआ है, एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरर मैं बन गया हूँ, क्या क्या इनाम और अवार्ड्स मुझे मिले हैं और लाखों डॉलर मैंने कमाए हैं, हालांकि ये तो अल्लाह का हाथ था, ये गॉड का हाथ था जिसकी वजह से वो फंगस जो था वो उस डिश में गिर गया था। तो ये भी, यानी अपनी डेट्रीमेंट को, और अपने, हम कभी नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का हाथ कहाँ होता है, हमारी कौन सी कल्चर डिश में एक फंगस गिरता है और फिर हम खूब चीखते हैं और शोर मचाते हैं और कहते हैं हमारी डिश गंदी हो गई, हालांकि वो अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए वहाँ पर वो चीज़ डाली होती है। फिर उसके बाद मेरी एक पेशेंट थी बहुत प्यारी, और वो दुनिया से गुजर चुकी है, बहुत ही प्यारी लड़की थी, और उसका कैंसर एक दफ़ा ठीक हो के वापस आया था, और खैर मेरा उससे काफ़ी करीबी ताल्लुक़ था, तो उसकी बात मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ, जब भी करती हूँ, जब भी मिलती थी मुझसे दर्द की शिकायत करती थी, रोती धोती थी, बुरा भला कहती थी, गालियाँ बहुत देती थी। तो एक दफ़ा मुझे बिल्कुल एंड में, जब उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा मेटास्टेसिस हो गया था, उसने रोना बिल्कुल छोड़ दिया था, मुझे कहती थी डॉक्टर अफशां अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। पता है डॉक्टर अफशां, मैं ना आपको अपनी एक बात बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा एक डरपोक लड़की थी और मैं छिपकलियों को देख के चीखती थी और मक्खियों और मच्छरों को देख के चीखती थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत बहादुर बनाना था, और अल्लाह चाहता था कि मैं इतनी बहादुर हूँ कि मैं किसी चीज़ से ना डरूँ। और पता है आपको, आप अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब तो मैं मौत से भी नहीं डरती हूँ। तो उसने मुझे लिख के भेजा था कि डॉक्टर अफशां, अगर मुझे कैंसर ना होता ना तो शायद मैं इसी तरह डरपोक और बेशरम, और जैसे आप मुझे कहती थी बेगैरत लड़की, हर चीज़ से डरती हो, तो मैं इसी तरह बेगैरत मर जाती, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत बहादुर बना दिया है, और आप मेरे लिए बहुत दुआ करें कि मेरी फैमिली भी इतनी बहादुर हो जाए। ये लोगों के अंदाज़ होते हैं अपनी जिन चीज़ों को हम इंतहाई बदकिस्मती समझते हैं और जिन चीज़ों को हम मौत समझते हैं, लोग उन्हें ज़िंदगी बना लेते हैं, लोग उनका शुक्र अदा करते हैं और लोगों को उन चीज़ों में अल्लाह मिलता है और उन चीज़ों में वो अल्लाह की खूबसूरती को और अपनी ज़ात की खूबसूरती को देखते हैं। इसी तरह एक और मेरा मरीज़ था जो जिसकी माशाल्लाह ज़िंदा है वो, जिसकी टांग काटी गई थी कैंसर की वजह से, और वो कहता, उसने मुझे लिखा था कि डॉक्टर अफशां, अगर मैं माजूर ना होता ना तो मैं बहुत बड़ा गुनहगार होता और मैं कभी भी अल्लाह से ना डरता, लेकिन इस बीमारी के बाद अब मैंने इरादा कर लिया है कि मैं अपने अल्लाह को करीब से देखूंगा, वो अल्लाह जिसको मैंने बीमारी में बहुत करीब से देखा है, अब मैं उस अल्लाह से दोस्ती करूंगा। फिर तो ये चंद मिसालें हैं जहाँ पे लोगों ने एक्सट्रीम पॉजिटिव के एक्सट्रीम नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव को देखा है, और ये मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है, ये अल्टीमेट अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होने वाली बात है, वो सबकॉन्शियस जिसके नीचे फिर अनकॉन्शियस लेवल पे हमारी रूह रहती है। तो ये वो लोग हैं, ये वो चंद खुशकिस्मत लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, आप भी ज़रूर मिले होंगे ऐसे लोगों से जिनकी बातें आपके ऊपर एक सारी ज़िंदगी के लिए एक असर छोड़ जाती हैं। और जब भी मुझे कोई मुसीबत दरपेश आती है, अल्लाह सबको मुसीबतों से गमों से बचा के रखे, लेकिन होता है ज़िंदगी में जब आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है, तो मैं ज़रूर अपनी डायरी खोल के ये बातें पढ़ती हूँ। आपको मैं इन बातों की तस्वीरें भेजूँगी, एक नीट मैंने लिस्ट भी लिख ली है जो मैं आपको भेजूंगी, और आपको भी मैं इनकरेज करूंगी कि हमेशा बुरी चीज़ में एक अच्छा कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलने के वादे के साथ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।